श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंध अध्याय 17 भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायियों द्वारा तथा सामान्य अनियमित मनुष्यों द्वारा भी अनुकरण किए जाने वाले भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया है। हे कमल नयन, अब कृपा करके मुझे बतलाइए कि इन नियत कर्तव्यों को संपन्न करके सारे मनुष्य किस तरह आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आपने इसके पूर्व अपने हंस रूप में ब्रह्मा जी से उन धार्मिक सिद्धांतों का कथन किया है जो अभ्यासकर्ता को परम सुख प्रदान करने वाले हैं। हे माधव, तब से अब काफी काल बीत चुका है और हे शत्रुओं के दमनकर्ता, आपने जो उपदेश पहले दिया था उसका महत्व शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। हे अच्युत, इस पृथ्वी पर या ब्रह्मा की सभा तक में परम धार्मिक नियमों का आपके सिवा कोई ऐसा वक्ता, सत्रष्टा तथा रक्षक नहीं है जहां साक्षात वेद निवास करते हैं। इस तरह हे मधुसूदन, जब आध्यात्मिक ज्ञान के सत्रष्टा, रक्षक तथा प्रवक्ता आप ही पृथ्वी का परित्याग कर देंगे तो इस विनष्ट ज्ञान को फिर से कौन बतलाएगा। अतएव हे प्रभु, समस्त धार्मिक नियमों का ज्ञाता होने के कारण आप मुझसे उन मनुष्यों का वर्णन करें जो आपके भक्ति मार्ग को संपन्न कर सकें और यह भी बताएं कि ऐसी भक्ति कैसे की जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्त प्रवर श्री उद्धव ने इस तरह भगवान से प्रश्न किया तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त बद्ध जीवों के कल्याण हेतु उन धार्मिक नियमों को बतलाया जो शाश्वत हैं। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धार्मिक नियमों के अनुकूल है, अतः यह सामान्य मनुष्यों को तथा वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले दोनों ही को जीवन में सर्वोच्च सिद्धि अर्थात शुद्ध भक्ति को जन्म देता है। अब तुम मुझसे उन परम धार्मिक नियमों को सीखो। प्रारंभ में सत्य युग में केवल एक सामाजिक श्रेणी थी जिसे हंस कहते थे, जिससे सारे मनुष्य संबंध होते थे। उस युग में सारे लोग जन्म से शुद्ध भगवत भक्त होते थे, इसलिए विद्वान लोग इस प्रथम युग को कृत युग कहते हैं, अर्थात ऐसा युग जिसमें सारे धार्मिक कार्य अच्छी तरह पूरे होते हैं। सत्य युग में अविभाज्य वेद ओम अक्षर ओंकार द्वारा व्यक्त किया जाता है और मैं ही एकमात्र मानसिक कार्यों का लक्ष्य धर्म हूँ। मैं चार पैरों वाले धर्म रूपी बैल के रूप में प्रकट होता हूँ, जिससे सत्य युग के निवासी तपस्यानिष्ठ तथा पाप रहित होकर भगवान हंस के रूप में मेरी पूजा करते हैं। हे परम भाग्यशाली, त्रेता युग के प्रारंभ में प्राण के स्थान से जो कि मेरा हृदय है, वैदिक ज्ञान तीन विभागों में प्रकट हुआ। ये है ऋग, साम तथा यजुः। तत्पश्चात उस ज्ञान से मैं तीन यज्ञों के रूप में प्रकट हुआ। त्रेता युग में भगवान के विराट रूप से चार जातियां प्रकट हुई। ब्राह्मण भगवान के मुंह से, क्षत्रिय भगवान की बाहों से, वैश्य भगवान के झंगों से तथा शूद्र उस विराट रूप के पांव से प्रकट हुए। प्रत्येक विभाग को उसके विशिष्ट कर्तव्यों तथा आचार व्यवहार से पहचाना गया। विवाहित जीवन मेरे विश्व रूप के जगन प्रदेश से प्रकट हुआ और ब्रह्मचारी विद्यार्थी मेरे हृदय से निकले। जंगल में निवास करने वाला विरक्त जीवन मेरे वक्ष स्थल से प्रकट हुआ तथा सन्यास मेरे विश्व रूप के सिर के भीतर स्थित था। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय की निम्न तथा उच्च प्रकृतियों के अनुसार मानव समाज के विविध वृत्ति परक वर्ण तथा सामाजिक आश्रम विभाग प्रकट हुए। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धि, संतोष, सहनशीलता, सहज स्पष्टवादिता, मेरी भक्ति, दया तथा सत्यता, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। तेजस्विता, शारीरिक बल, संकल्प, बहादुरी, सहनशीलता, उदारता, महान प्रयास, स्थिरता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति तथा नायकत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। वैदिक सभ्यता में श्रद्धा, दानशीलता, दिखावे से दूर रहना, ब्राह्मणों की सेवा करना तथा अधिकाधिक धन संचय की निरंतर आकांक्षा, ये वैश्यों के प्राकृतिक गुण हैं। ब्राह्मणों, गौवों, देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों की निष्कपट सेवा तथा ऐसी सेवा करने से जो भी आमदनी हो जाए उससे पूर्ण तुष्टि, ये शूद्रों के स्वाभाविक गुण हैं। अस्वच्छता, बेईमानी, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ झगड़ना, काम, क्रोध एवं तृष्णा, ये उनके स्वभाव हैं जो वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर हैं। अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, अन्यों के लिए सुख तथा कल्याण की इच्छा एवं काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्ति, ये समाज के सभी सदस्यों के कर्तव्य हैं। समाज का द्विजन्मा सदस्य संस्कारों के द्वारा गायत्री दीक्षा होने पर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। गुरु द्वारा बुलाए जाने पर उसे गुरु के आश्रम में रहना चाहिए और आत्मनियंत्रित मन से सावधानी से वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से मूंज की पेटी तथा मृग चर्म के वस्त्र धारण करने चाहिए, उसे जटाएं रखनी चाहिए और दंड तथा कमंडल धारण करना चाहिए। उसे अक्ष के मनके तथा जनेऊ धारण करना चाहिए। अपने हाथ में शुद्ध कुश लिए हुए उसे कभी भी कोई विलासपूर्ण या उत्तेजक आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे व्यर्थ दान नहीं चमकाना चाहिए, न ही अपने वस्त्रों से रंग उड़ाना या उन पर लोहा इस्त्री करना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्नान करते, खाते, यज्ञ करते, जप करते या मल मूत्र विसर्जन करते समय सदैव मौन रहे। वह अपने नाखून तथा कांख एवं गुप्तांग सहित किसी अंग के बाल नहीं काटे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह कभी वीर्यपात न करे। यदि संयोग वश वीर्य स्वतः निकल जाए तो ब्रह्मचारी तुरंत जल में स्नान करे, प्राणायाम द्वारा अपना श्वास रोके और गायत्री मंत्र का जप करे। ब्रह्मचारी को शुद्ध होकर तथा स्थिर चेतना से अग्नि, सूर्य, आचार्य, गायों, ब्राह्मणों, गुरु, सम्माननीय वरिष्ठ जनों तथा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय मौन होकर उपयुक्त मंत्रों को गुनगुनाते हुए उच्चारण करके ऐसी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करे। उसे सामान्य पुरुष समझते हुए उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। वह प्रातः तथा सायंकाल भोजन तथा अन्य वस्तुएं एकत्र करके गुरु को प्रदान करे। तब आत्म संयम पूर्वक वह अपने लिए उतना ही स्वीकार करे जो आचार्य उसके लिए निर्दिष्ट कर दें। गुरु की सेवा करते समय शिष्य विनीत सेवक के समान रहता रहे और जब गुरु चले तो वह सेवक की तरह उनके पीछे पीछे चले। जब गुरु सोने लगे तो सेवक भी पास ही लेट जाए और जब गुरु जगे तो सेवक उनके निकट बैठकर उनके चरण कमल चापने तथा अन्य सेवा कार्य करने में लग जाए। जब गुरु अपने आसन पर बैठे हो तो सेवक उनके पास हाथ जोड़कर गुरु आदेश की प्रतीक्षा करे। वह इस तरह से गुरु की सदैव पूजा करे। जब तक विद्यार्थी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी न कर ले उसे गुरु के आश्रम में कार्यरत रहना चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति से पूर्णतया मुक्त रहना चाहिए और उसे अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। यदि ब्रह्मचारी महरलोक या ब्रह्मलोक जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि गुरु को अपने सारे कर्म अर्पित कर दे और आजीवन ब्रह्मचर्य के शक्तिशाली व्रत का पालन करते हुए अपने को श्रेष्ठ वैदिक अध्ययन में समर्पित कर दे। इस तरह गुरु की सेवा करने से वैदिक ज्ञान में प्रबुद्ध समस्त पापों तथा द्वैत से मुक्त हुआ व्यक्ति परमात्मा रूप में मेरी पूजा करे, क्योंकि मैं अग्नि, गुरु, मनुष्य की आत्मा तथा समस्त जीवों के भीतर प्रकट होता हूँ। जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी, उन्हें स्त्रियों के हाथ कभी भी देखकर, छूकर, बात करके, हंसी मजाक करके या खेल खेल में उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। न ही वे किसी ऐसे जीव का साथ करें जो संभोग रत हो। हे उद्धव, सामान्य स्वच्छता, हाथों को धोना, स्नान करना, सूर्योदय, दोपहर तथा शाम को धार्मिक सेवा का कार्य करना, मेरी पूजा करना, तीर्थ स्थान जाना, जप करना, अछूत, अखाद्य या चर्चा के अयोग्य वस्तुओं से दूर रहना तथा समस्त जीवों में परमात्मा रूप में मेरे अस्तित्व का स्मरण करना, इन सिद्धांतों को समाज के सारे सदस्यों को मन, वचन तथा कर्म के संयम द्वारा पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का महान व्रत धारण करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है और वह गहन तपस्या द्वारा भौतिक कर्म करने की लालसा को भस्म कर देता है। इस तरह भौतिक इच्छा के कलमच से रहित होकर वह मेरा भक्त बन जाता है। जो ब्रह्मचारी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह गुरु को समुचित पारिश्रमिक गुरु दक्षिणा दे, स्नान करे, बाल कटाए और उचित वस्त्र इत्यादि धारण करे। तब अपने गुरु की अनुमति से वह अपने घर को जाए। अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के इच्छुक ब्रह्मचारी को अपने परिवार के साथ घर पर रहना चाहिए और जो गृहस्थ अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहे उसे जंगल में प्रवेश करना चाहिए, जबकि शुद्ध ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मेरे शरणागत नहीं है उसे एक आश्रम से दूसरे में क्रमशः जाना चाहिए और इससे विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन बसाना चाहता है उसे चाहिए कि अपनी ही जाति की ऐसी स्त्री से विवाह करे जो निष्कलंक तथा उम्र में उससे छोटी हो। यदि कोई व्यक्ति अनेक पत्नियां रखना चाहता है तो उसे प्रथम विवाह के बाद उनसे भी ब्याह करना चाहिए और हर पत्नी एक दूसरे से निम्न जाति की होनी चाहिए। सभी द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और दान देना चाहिए, किंतु ब्राह्मण ही दान ले सकते हैं, वे ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और अन्यों के लिए यज्ञ कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण जो यह माने कि अन्यों के दान लेने से उसकी तपस्या, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा तथा यश नष्ट हो जाएंगे, उसे चाहिए कि अन्य दो ब्राह्मण वृत्तियों से वेद ज्ञान की शिक्षा देकर तथा यज्ञ संपन्न करके अपना भरण करे। यदि वह ब्राह्मण यह माने कि ये दोनों वृत्तियां भी उसके आध्यात्मिक पद को क्षति पहुंचाती हैं, तो उसे चाहिए कि खेतों में गिरा अन्न चीला भीने और अन्यों पर निर्भर न रहते हुए जीवन निर्वाह करे। ब्राह्मण का शरीर शूद्र इंद्रिय भोग के निमित्त नहीं होता, प्रत्युत वह कठिन तपस्या अपना करके मृत्यु के उपरांत असीम सुख भोगेगा। ब्राह्मण गृहस्थ को खेतों तथा मंडियों में गिरे अन्न के दाने बीन कर अपने मन में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपने को निजी इच्छा से मुक्त रखते हुए मुझ में लीन रहकर उदात्त धार्मिक सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह गृहस्थ के रूप में ब्राह्मण बिना आसक्ति के घर में ही रह सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार जहाज समुद्र में गिरे हुए लोगों को बचा लेता है, उसी तरह मैं उन व्यक्तियों को सारी विपत्तियों से तुरंत बचा लेता हूँ जो दरिद्रता से पीड़ित ब्राह्मणों तथा भक्तों को उभार लेते हैं। जिस तरह हाथियों का राजा अपने झुंड के अन्य सारे हाथियों की रक्षा करता है और अपनी भी रक्षा करता है, उसी तरह निर्भीक राजा को एक पिता के समान अपनी सारी प्रजा को कठिनाई से बचाना चाहिए और अपनी भी रक्षा करनी चाहिए। जो राजा अपने राज्य से सारे पापों को हटाकर अपनी तथा सारी प्रजा की रक्षा करता है, वह निश्चय ही इंद्र के साथ सूर्य जैसे तेजवान विमान में सुख भोगता है। यदि कोई ब्राह्मण अपने नियमित कर्तव्यों द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर पाता और कष्ट उठाता है, तो वह व्यापारी की वृत्ति अपनाकर वस्तुएं क्रय विक्रय करके अपनी दीन अवस्था को सुधार सकता है। यदि वह व्यापारी के रूप में भी नितांत दरिद्र बना रहता है, तो वह हाथ में तलवार लेकर क्षत्रिय वृत्ति अपना सकता है, किंतु किसी भी दशा में वह किसी सामान्य स्वामी को स्वीकार करके कुत्ते जैसा नहीं बन सकता। श्वान वृत्ति। राजा या राजकुल का कोई सदस्य जो अपनी सामान्य वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर सकता, वह वैश्य की तरह कर्म कर सकता है, शिकार करके जीवन चला सकता है, अथवा ब्राह्मण की तरह अन्यों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर काम कर सकता है, किंतु किसी भी दशा में उसे शूद्र वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। जो वैश्य अपना जीवन निर्वाहन न कर सकता हो, वह शूद्र वृत्ति अपना सकता है, और जो शूद्र उपयुक्त स्वामी न पा सके, वह डलिया तथा चटाई बनाने जैसे सामान्य कार्यों में लग सकता है। किंतु समाज के वे सारे सदस्य जिन्होंने आपातकाल में निष्कृष्ट वृत्तियां अपनाई हों, उन्हें विपत्ति बीत जाने पर इन कार्यों को तुरंत त्याग देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम वालों को नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की, स्वदा मंत्र द्वारा पूर्वजों की, स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके देवताओं की, अपने हिस्से का भोजन देकर सारे जीवों की तथा अन्न एवं जल अर्पित करके मनुष्यों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, जीवों तथा मनुष्यों को मेरी शक्ति की अभिव्यक्तियां मानते हुए हर मनुष्य को नित्य ये 5 यज्ञ संपन्न करने चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि स्वतः ही प्राप्त होने वाले धन से या ईमानदारी से संपन्न किए जाने वाले कार्य से जो धन प्राप्त हो, उससे अपने आश्रितों का ठीक से पालन करें, उसे अपने साधनों के अनुसार यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सव संपन्न करने चाहिए। अनेक आश्रित पारिवारिक जनों की देख रेख करने वाले गृहस्थ को न तो उनसे अत्यधिक आसक्त होना चाहिए, न ही अपने को स्वामी मानकर मानसिक रूप से असंतुलित रहना चाहिए। बुद्धिमान गृहस्थ को समझना चाहिए कि सारा संभव सुख जिसका वह पहले ही अनुभव कर चुका होता है, क्षण भंगुर है। बच्चों, पत्नी, संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है। शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संगियों से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती हैं। वास्तविक स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मुक्त आत्मा को चाहिए कि घर में एक मेहमान की तरह किसी स्वामित्व की भावना या मिथ्या अहंकार के बिना रहे। इस तरह वह घरेलू मामलों में नहीं फंसेगा। जो गृहस्थ भक्त अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए मेरी पूजा करता है, वह चाहे तो घर पर ही रह सकता है अथवा किसी पवित्र स्थान में जा सकता है, या यदि उसके कोई जिम्मेदार पुत्र हो तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। किंतु जिस गृहस्थ का मन अपने घर में आसक्त है और जो इस कारण अपने धन तथा संतान को भोगने की तीव्र इच्छाओं से विचलित है, जो स्त्रियों के लिए काम भावना से पीड़ित है, जो कृपण मनोवृत्ति रखता है और जो मूर्खतावश यह सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी है और मैं ही सब कुछ हूँ, निसंदेह वह व्यक्ति माया जाल में फंसा हुआ है। हाय मेरे वृद्ध माता पिता तथा गोद में बालक वाली मेरी पत्नी तथा मेरे अन्य बच्चे, मेरे बिना उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और उन्हें असहाय कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे गरीब संबंधी मेरे बिना कैसे रह सकेंगे? इस तरह अपनी मूर्खता पूर्ण मनोवृत्ति के कारण वह गृहस्थ जिसका हृदय पारिवारिक आसक्ति से अभिभूत रहता है कभी भी तुष्ट नहीं होता, फलस्वरूप अपने परिवार वालों का निरंतर ध्यान करते हुए वह मर जाता है और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन नामक 17वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।